समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जन्म दिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में साथ हूं मैं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनोज, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, ऑफ कोर्स वी विल बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो। वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम यू नो फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। एंड ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट द शो मनोज विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India operates with the spirit of development, not expansionism, dedicates 3 new frontline naval combatants to the nation.
77वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संकट और आपदाओं के दौरान भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना की।
Highlighting Make in India initiative, India Pavilion opens at Hemtextil 2025 in Frankfurt, Germany.
मौसम विभाग ने अत्यधिक घने कोहरे के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई उड़ानों में विलंब।
एंड इन खो खो वर्ल्ड कप 2025, इंडियन वुमेन्स टीम इज सेट टू फेस ईरान दिस इवनिंग एंड इंडियन मेन्स टीम टू कम्पीट अगेंस्ट पेरू टुनाइट एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। And now it's time for our segment Dateline India, and of course today is Army Day, so सबसे जाहिर जो जरूरी बात है ये है मनोज के आज हम सब लोग Dateline India में जाहिर सी बात है Army Day पे ही focus रखेंगे। And I open this segment with a quote from Prem Ramchandani, I regret I have but one life to give for my country.
आज हम 77वां भारतीय सेना दिवस मना रहे हैं। आइए याद रखें कि स्वतंत्रता की एक कीमत होती है। उन सभी को हार्दिक सलाम जो अटूट संकल्प के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आप हमारा गौरव हैं।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है और इसका अर्थ है स्वयं से पहले सेवा।
Yes, absolutely, Manoj. And it signifies that the army has always prioritized the safety and security of the nation. Every year on 15th January, we commemorate this day as Army Day to remember the occasion when Field Marshal K.M. Kariyappa took over the command of the Indian Army from the last British Commander-in-Chief in 1949, thus becoming the first Indian Commander-in-Chief of independent India. This day symbolizes India's assertion of military autonomy post-independence, transitioning command to Indian leadership.
जी हाँ सायरा, ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो देश की सैन्य संप्रभुता का प्रतीक है। ये दिन देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान का सम्मान करता है, साथ ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा देता है।
यस एंड मनोज, कल यानी कि 14 जनवरी को हम लोग आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं एंड दैट ईयर इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ द ईयर 1953 व्हेन द फर्स्ट फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, he retired after leading the forces to victory in the 1947 war.
हाँ, लेकिन सायरा क्या हमारे श्रोता जानते हैं कि फील्ड मार्शल कोडनडेरा मडप्पा करियप्पा कौन थे?
आप बताइए।
हाँ, वे भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना का उन्होंने नेतृत्व किया था। वे फील्ड मार्शल की सर्वोच्च रैंक पाने वाले दो भारतीय सेना अधिकारियों में से एक हैं।
Yes, and the other one was Sam Manekshaw.
Yeah.
And well, Kariyappa was appointed as the first Commander-in-Chief of Independent Indian Army on 15th January, which is celebrated as Indian Army Day. And we all know that since the last British Commander-in-Chief, jinse unhone liya tha command, that was General Sir F.R.R. Burka. And in 2025, the Indian Army Day Parade has been hosted by Pune for the first time.
Yeah. 1947 में करियप्पा पहले भारतीय थे जिन्हें युद्ध की उच्च दिशाओं पर इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली यूके में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चुना गया था। उन्हें अमरीकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1983 में करियप्पा को फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किया।
Yes, and I just mentioned, Manoj, that this year Pune has been chosen as the city to host the parade. And if you ask why Pune, so any guesses? Ki aisa kyun ki Pune ko hi chuna gaya? Well, because obviously that the National Defence Academy, that is better known as NDA, that is of course situated in Pune.
देश के रक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता पुणे ने सैन्य नेताओं को तैयार किया है और रक्षा रणनीतियों में प्रगति का नेतृत्व किया है। और यहाँ सेना दिवस मनाना न केवल शहर की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है।
And thus marking a shift from tradition, the celebration of Army Day outside Delhi reflects the Army's recent efforts to decentralize national military events. This approach fosters stronger connections with citizens across the states, promoting a deeper appreciation of the Army's role and contributions to the nation.
Rashtrapati Draupadi Murmu, Pradhan Mantri Narendra Modi, Kendriya Griha Mantri Amit Shah aur Chief of Defence Staff General अनिल चौहान ने इस दिन सेना के जवानों और दिग्गजों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।
The Prime Minister in a social media post said that the government is committed to the welfare of the armed forces and their families through various reforms and is focusing on modernization. Union Home Minister in a social media post said that soldiers have earned the Indian Army a place among the best armies of the world with their indomitable valor and courage.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और एकता की आधारशिला बनकर खड़ी है। जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय सेना की विरासत चुनौतियों से निपटने, संप्रभुता बनाए रखने और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने की उल्लेखनीय विश्वसनीय क्षमता पर बनी है।
Among the three naval combatants, INS Surat, INS Nilgiri and INS Vakshir was commissioned today by Prime Minister Modi at Mumbai's Naval Dockyard. INS Surat has a unique feature that sets it apart from the other vessels. Due to this, INS Surat is considered a significant step towards making the defence sector more inclusive for women officers, even in combat roles. Aaiye jante hain apne correspondents se is pe aur zyada.
INS Surat, the fourth and final ship of P-15B guided missile destroyer project, ranks among the largest and most sophisticated destroyers in the world. Apart from being the Indian Navy's first AI-enabled warship, this massive destroyer also has dedicated accommodation for female officers and sailors on board. Currently, INS Surat has two female officers on board, and although they are in non-combat roles, they play a crucial part in keeping the vessel operational. Let's first hear from Lieutenant Astha Kamboj, Deputy Logistics Officer of INS Surat.
My role basically focuses on the forecasting and the management of the inventory that we have on board and to cater for all the operational and day-to-day requirements that may come up. We are also having the clothing of the personnel under us. This entirely comprises of the logistics department, and we can also say that all these factors play a huge role in keeping up the morale of the ship's company. So we can be tasked as the morale keepers of the ship.
As INS Surat prepares for long voyages, the medical team on board is given the key responsibility of keeping the ship's company fit and healthy. Elaborating on this is Surgeon Lieutenant Ahalya Arvindan, Principal Medical Officer, INS Surat.
So we do annual medical examination, which ensures that our ship's company is fit to fight any war or go on prolonged deployments. We are ready to cater to any emergencies that might arise while we are at sea. We have a new telemedicine equipment which uses satellite-based technology to communicate with a tertiary care hospital ashore. So we are able to communicate with a senior doctor sitting on a tertiary hospital.
Underscoring the dedicated accommodation for female officers and sailors on board INS Surat, Lieutenant Aastha Kamboj added,
INS Surat was envisioned in such a way that before the design was finalized, accommodations separately were catered for the women officers and Agniveer that will be joining us on board. That is why this ship becomes unique.
After taking the historic step of incorporating female officers in all roles within the armed forces, INS Surat has marked a milestone in boosting the deployment of women on board frontline warships. For Parikrama, with Jeevan Bhavsar, this is Ankita Apte from Mumbai.
And everyone from Team Parikrama, we salute our Indian Army for their relentless vigilance at our borders, for the courageous sacrifices on the battlefield, and for the unwavering spirit in times of crisis.
Ji haan, un logon ko salam jo din raat hamari seemaon ki raksha karte hain. Aapka balidan ye sunishchit karta hai ki hum raat mein shanti se so saken. Bharatiya Sena Divas ki shubhkamnaen.
Manoj, the second topic that we have in Dateline India is very interesting kyunki zyadatar agar hum log kisi se bhi baat cheet shuru karte hain to Hindustan mein khaas taur se wo mausam ke upar zarur hoti hai, and the second favorite topic is politics. Lekin aaj hum mausam kyun baat kar rahe hain? Because IMD, the India Meteorological Department, is celebrating 150 years of its existence today.
Ji haan, भारत के विकास और सुरक्षा की आधारशिला के रूप में इसकी विरासत निर्विवाद है. अग्रणी मौसम संबंधी अनुसंधान से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने तक आईएमडी लगातार विकसित हो रहा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मौसम अप्रत्याशितता के युग में इसकी सेवाएं प्रासंगिक और प्रभावशाली बनी रहे.
तो अगर 150 साल हो रहे हैं मनोज आईएमडी को, तो दैट मीन्स के हमारे मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले से ये जो है डिपार्टमेंट कह दीजिए या ये संस्था कह दीजिए अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ काम कर रही है. एंड बिकॉज ऑफ इट्स इनोवेशन एंड सर्विस, आईएमडी स्टैंड्स एज अ टेस्टमेंट टू द नेशंस प्रोग्रेस एंड रेजिलियंस. व्हाइल इंडियाज फर्स्ट मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1793, एंड इफ यू हैव एनी गेसेस कि कहां थी वो सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी, एनी गेस मनोज?
चेन्नई में.
यस, इट वॉज इन चेन्नई, जिसको आज चेन्नई कहते हैं लेकिन तब मेड्रास बोलते थे. एंड हाउएवर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज वी नो इट टुडे वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, एंड वेल इट सून आफ्टर इट ऑल्सो सेट अप अ पोस्टल सर्विस बेस्ड प्रोसेस फॉर कलेक्शन ऑफ डेली वेदर डेटा एट द नेशनल लेवल. एंड द फर्स्ट डेली वेदर रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1878.
जी हाँ, 15 जनवरी 1875 को आईएमडी ने राष्ट्र के लिए समर्पित सेवा का युग शुरू किया. आईएमडी की स्थापना 1864 में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और 1866 और 1871 में दो अकालों के कारण हुई तबाही की पृष्ठभूमि में की गई थी. 1875 में मामूली शुरुआत से आईएमडी ने मौसम संबंधी अवलोकन, संचार, पूर्वानुमान और मौसम सेवाओं के लिए अपने बुनियादी ढांचे का उत्तरोत्तर विस्तार किया है और इसने समानांतर वैज्ञानिक विकास हासिल किया है.
And Manoj, we all know that yesterday our Prime Minister launched Mission Mausam to make the country a weather-ready and climate-smart nation. Well, the launch took place during the celebrations of the 150th Foundation Day of IMD at Bharat Mandapam in New Delhi. And Prime Minister also released a commemorative coin to mark 150 years of IMD. Also, IMD's office in Pune in Maharashtra, which was earlier the headquarters of IMD, has a unique story behind its name. Aur jante hain kya hai wo story apne correspondent se.
Located in the heart of the city of Pune, the beautiful building housing the offices and laboratories of the IMD is known as the Simla office. Simla was once the headquarters of the IMD before it was moved to Pune, which is now known as Pune. Let us hear more about this from Dr. Medha Khole, head of Weather Forecasting Department, IMD.
The headquarter of this department was located in Simla in Himachal Pradesh. The reason being that the British, they found the climate of Himachal Pradesh or climate of Simla to be more friendly for them. And thereafter, in the year of 1928, the headquarters was shifted to Pune, because that time Pune was also equally comfortable in terms of climate and it was found to be suitable for Britishers. And in 20th July of 1928, the building of the India Meteorological Department headquarters at Pune was inaugurated. Now also the Pune office of India Meteorological Department is called a Simla office or Simla office. And even in the local societal terminology also, even the bus stop is called a Simla office bus stop. So it is so popularly associated with Simla because the headquarters of IMD, India Meteorological Department, was shifted from Simla to Pune. And after the independence, the headquarters was naturally shifted to the capital of India, New Delhi, in 1947. But still, Pune office of IMD is called a Simla office.
Built on a 10-acre site in the Bhamburda area, now Shivaji Nagar in Pune, the building features a beautiful observation clock tower and was inaugurated by Sir Leslie Orme Wilson, the then governor of Bombay Presidency. Although after independence, the IMD headquarters was relocated to Delhi, Pune retained its significance as a key center of the IMD and continues to operate from the iconic Simla office. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
Moving on in our show, well, now it's that time jo ki hamare show ke naam ko pura justify karta hai. Yes, it's time for the parikrama of the country. Aur is silsile mein hum log apne safar ki shuruaat sabse pehle karenge northeast se in Tripura, where the 3-day long Teerth Mukha Paush Mela and festival is being celebrated with religious and cultural fervor. The festival, taking place on the banks of River Gomti in South District, is a unique blend of religion, faith and in order to ensure celebrations go smoothly, the Border Security Force has intensified security in the bordering area, which is in close proximity to the Teerth Mukh Mela. Our correspondent Kunal Shinde and Shyamamal Deb has more in this report.
The Teerth Mukh Mela, which has a rich religious and cultural heritage, culminated on the banks of River Gomti in the Gomti district of Tripura. The Mela is a sight to behold as tens and thousands from across Tripura converge at Teerth Mukh to take a holy dip in River Gomti. The Mela, which began on January 13 on the occasion of auspicious Poush Purnima, coincided with the Mahakumbh Mela that is underway at Prayagraj in Uttar Pradesh. Teerth Mukh, nestled around serene hills and terrains, is seated on the lap of nature from where River Gomti originates. Teerth Mukh, one of the important holy Hindu religious sites, also witnesses people belonging to the Hindu from both Bengali and indigenous communities who come together to take holy bath on the wee hours of Makar Sankranti, marking the commencement of the sun's northern course. With the current situation in neighboring Bangladesh, the Border Security Force had beefed up its vigil in the border areas closer to Teerth Mukh. As part of its patrolling mechanism, the BSF troops combining both male and female personnel resorted to boat patrolling in the vast Dambur Lake. Also, the BSF jawans were seen maintaining highest vigil alongside the iron-fenced area on the international border on foot, accompanied by sniffer dog, motorbike and vehicle. Talking exclusively to Akashwani News, Deputy Inspector General, Sector Headquarter, BSF Udaipur, Mr. Anil Sharma said the force maintained extra vigil for the Teerth Mukh Mela near the international border.
Yahan pe jo hama हमारे ये लोग हैं जो सीमा पे हैं या हमारे स्टेट के हैं, यहाँ पे त्रिपुरा स्टेट में रह रहे हैं, ये इस पर्व पर गोमती, जहाँ पे गोमती नदी का संगम है, वहाँ पे आके अपना स्नान करते हैं और अपने जो पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। और ये संगम बॉर्डर से काफी नजदीक है। बॉर्डर के नजदीक होने से हमारा दायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बॉर्डर पे काउंटर पार्ट भी है, काउंटर पार्ट से अनहोनी करने की कोशिश करें, तो इसलिए हमने इसके लिए बहुत अलर्ट कर रखा है। इसमें हमने अलग अलग मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ा रखी है, नॉर्मल पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है, एरिया को 24/7 गार्ड कर रहे हैं, जिससे कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट।
द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द बीएसएफ टू फैसिलिटेट स्मूथ कल्मिनेशन ऑफ द मेला बाय गिविंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स बाय टेकिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड इज अ प्रेज़वर्दी स्टेप एंड एग्जेम्प्लीफाइज द ग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स। कुणाल शिंदे फॉर परिक्रमा फ्रॉम आकाशवाणी न्यूज अगरतला।
गोवा और मछली एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। गोवा में इन दिनों एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल चल रहा है 10 से 12 जनवरी तक। इस उत्सव में ताजे पानी और समुद्र की विभिन्न मछलियों को प्रदर्शित किया गया है। इससे व्यवसाय के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल हेल्प द फिशरमैन कम्युनिटी एंड बिजनेसमैन बाय इंट्रोड्यूसिंग देम टू लेटेस्ट टेक्निक्स इन फिशिंग एज वेल एज द गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट द सेक्टर। द फेस्टिवल आल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग द यूथ टुवर्ड्स द फिशिंग एंड अलाउ जनरल पब्लिक टू टैप पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर एनहांसिंग फिश प्रोडक्शन। टू एंगेज विजिटर्स द फेस्टिवल ऑफर्ड कैप्टिवेटिंग कल्चरल एक्सपीरियंस। दिस इंक्लूडेड लाइवली परफॉर्मेंसेस ऑफ गोवन फोक डांस and a tempting food court serving authentic Goan delicacies.
Festival also included information panels about topics like workshops for fisheries stakeholders, release of endangered marine species and ghost net collection. From 2nd January onwards, a special van traversed through Goa to appeal people to visit the festival and benefit from it.
Thousands of visitors and celebrities like actor Shruti Marathe visited the 3-day-long festival and experienced the authentic Goan culture. For Parikrama, Mahesh Sopre from Akashwani Panchi.
एंड नाउ मनोज, इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर। और आज के आजादी के सफर में हम लोग याद करने वाले हैं सैफुद्दीन किचलू को। यस, द एजुकेशनिस्ट एंड गार्डियन फ्रीडम फाइटर सैफुद्दीन किचलू, हु वाज बोर्न टुडे इन द ईयर 1888 इन अमृतसर पंजाब। अ लॉयर बाय प्रोफेशन, किचलू डिवोटेड हिज लाइफ टू प्रिजर्विंग कॉम्युनल हार्मनी इन इंडिया एंड वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलर एक्ट इन अमृतसर। इनफैक्ट बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग का पूरा सानहा हुआ था, तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे लोग जो इकट्ठा हुए थे, इट वॉज अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ फ्यू फ्रीडम फाइटर्स एंड वन ऑफ देम वॉज सैफुद्दीन किचलू। लेट्स हियर मोर इन आजादी का सफर।
किचलू, alongside fellow freedom fighter Satyapal, led a strike to agitate people against British oppression. In a public gathering in Amritsar on 30th March 1919, addressing a gathering of 30,000 people, he said,
"The message of Mahatma Gandhi has been read to you. All citizens should be prepared for resistance. This does not mean that this sacred town or country should be flooded with blood. The resistance should be a passive one. Do not use harsh words in respect of any policeman or traitor which might cause him pain or lead to the possibility of a breach of peace."
The British were alarmed by the growing resistance against the Rowlatt Act and they arrested Kichlu and Satyapal on the 10th April and sent them to Dharamshala. Their arrest triggered the mass gathering at Jallianwala Bagh, which was violently crushed by General Dyer, massacring hundreds of innocent people on 13th April 1919.
Thank you.
Kichlu was eventually released from prison in December 1919.
Kichlu was instrumental in the establishment of Swaraj Ashram in January 1921 at Amritsar to train young men for national work and to promote Hindu-Muslim unity. Saifuddin Kichlu was repeatedly arrested by the British authorities and spent a total of 14 years in jail.
Kichlu was also the chairman of the reception committee of the Congress session in Lahore when, on 26 January 1930, the Indian National Congress declared Indian independence. Kichlu was a supporter of Bhagat Singh and was actively involved with him in Naujawan Bharat Sabha. He was also a member of the foundation committee of Jamia Millia Islamia.
In 1947, Kichlu strongly opposed the acceptance of the partition of India. He spoke out against it at public meetings across the country. He called it a blatant surrender of nationalism for communalism. He was the founder president of the All India Peace Council, besides remaining vice president of the World Peace Council.
He received the Stalin Peace Prize in 1952. In 1951, the government of India made Kichlu, along with Jawaharlal Nehru and Maulana Abul Kalam Azad, life trustees of the Jallianwala Bagh National Memorial Trust. He died on 9th October 1963. We salute the great nationalist.
We also remember social reformer Ram Gopal Ghosh, who died on 15 January 1868. One of the leaders of the Young Bengal group, he was referred to as Indian Demosthenes, comparing him to the Greek statesman of ancient Athens. Ghosh also helped in the establishment of Bethune College in 1879, which was the first women's college in India as well as in Asia.
Ram Gopal Ghosh joined the class of radical thinker Henry D'Orazio and soon became friendly with Ramtanu Lahiri and the other D'Orazians. When D'Orazio established the Academic Association, Ghosh became one of its leading members. In 1853, he was among the first to demand the eligibility of Indians in the civil service examinations.
In 1854, he proposed the establishment of universities in India. Ram Gopal Ghosh took an active part in the establishment of the British Indian Association. We salute the great Indian.
And in business news today, benchmark domestic equity indices entered with modest gains for the second straight session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex advanced almost 224 points to close at 76,724, while Nifty 50 added 37 points to settle at 23,213.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. खो-खो विश्व कप में आज शाम भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा. इसके बाद भारतीय खो-खो पुरुष टीम का सामना रात 8:15 बजे पेरू से होगा.
दक्षिण कोरिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान प्रियंका इंगले के नेतृत्व में भारत की महिला टीम आत्मविश्वास से भरी है. टीम ने कल शाम दक्षिण कोरिया को 175-18 के बड़े स्कोर से मात दी. मैच में भारत ने टॉस जीतकर शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और शानदार खेल का प्रदर्शन किया. दक्षिण कोरिया को टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा और मेजबान के खिलाफ वह ज्यादा अंक नहीं बटोर पाई. इस बीच भारतीय पुरुष टीम भी अपने खेल से विपक्षी टीमों पर हावी है और टीम ने कल ब्राजील को 64-34 के स्कोर से हराया. रोमांचक खेल में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारत आखिर तक ब्राजील से आगे रहा. इससे पहले टूर्नामेंट में पुरुष टीम ने सोमवार को आयोजित उद्घाटन मैच में नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज की थी. इन जीतों के साथ पुरुष टीम आज पेरू के खिलाफ अपनी जीत की लय जारी रखना चाहेगी. परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल.
अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी याद है पुण्यतिथि या जन्म दिवस. श्रोताओं, आज तपन सिन्हा की पुण्यतिथि है. वे बांग्ला एवं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक थे. उन्हें 2006 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्होंने सगीना, काबुलेवाला, एक डॉक्टर की मौत, खुदितो पाषाण, जिंदगी जिंदगी और सफेद हाथी जैसी फिल्में बनाई.
तुमने तो पीएचडी किया, मैं तो एक मामूली एमबीबीएस हूँ. दादा आपके जीन्स में आपके क्रोमोसोम्स में कुछ है जो पीएचडी और डिग्री होल्डर्स के पास नहीं होता है।
बेकार की बात है।
मैंने जब रियलाइज किया कि मैं एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूं, तो मैंने सोचा आई लव साइंस, आई कांट लीव साइंस। तो मैंने सोचा कि साइंटिस्ट बने बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इन द सेंस कि आप जैसे लोगों के काम के बारे में गवर्नमेंट को बताना। ये गवर्नमेंट को ये बताना कि इंडिया में भी फंडामेंटल साइंस के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है।
ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे बोरा कोई लंदन का।
And Tapan Sinha's cinema not only garnered, you can say, accolades in India, but also in Berlin, Venice, London, Moscow and many other international film festivals.
और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।